आंखें दिखा नहीं इसने। ये परिक्रमा के विषय में, परिक्रमा क्यों करनी चाहिए, इसका क्या फल है, और अभी जैसे नवदीप परिक्रमा की आपने बात कही है, उसके विषय में थोड़ा सा, बहुत अधिक तो नहीं है।
नहीं नहीं ठीक ठीक
हाँ, थोड़ा सा ऐसा यहाँ गर्मी है, थोड़ा सा कुछ महाराज को
जरूरत नहीं, माया ठीक,
कोई जरूरत नहीं।
हाँ थोड़ा सा एक ऐसा है, पहले मैं बोल देता हूँ फिर रिकॉर्ड।
हिंदी में होगा कि अंग्रेजी में उत्तर होगा?
हिंदी में, सब हिंदी में।
अच्छा
ठीक है, हिंदी में ही दूंगा।
हाँ हाँ, ये जरा सुन लीजिएगा महाराज, आज हमें यह बतलाते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे मध्य गौड़िया वेदांत समिति के प्रमुख श्री नारायण महाराज का ब्रिसबेन में आगमन हुआ है।
ओ, कौन सा हम लोग गौड़िया वेदांत समिति?
समिति ट्रस्ट अथवा इंटरनेशनल गौड़िया वेदांत ट्रस्ट।
इंटरनेशनल
बोल ही देता हूँ, पेन है सर मेरे पास, है पेन, पेन है।
इंटरनेशनल गौड़िया वेदांत ट्रस्ट
समिति नहीं, ट्रस्ट है,
इंटरनेशनल गौड़िया वेदांत ट्रस्ट।
आज हमें यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे मध्य इंटरनेशनल गौड़िया वेदांत ट्रस्ट के प्रमुख श्री नारायण महाराज का ब्रिसबेन में आगमन हुआ है। महाराज ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय के प्रमुख आचार्यों में से हैं। आचार्य चाणक्य के वचनों में, साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधु कालेन फलते तीर्थ सत्य साधु समागम, अर्थात साधुओं का दर्शन पुण्यशाली होता है, वह तीर्थ के समान होते हैं, तीर्थों का फल बहुत काल में मिलता है लेकिन साधु समागम का अर्थ का फल तुरंत मिल जाता है। संत हमें अपने वास्तविक स्वरूप का भान कराते हैं। मैं महाराज से सर्वजन हिताय के कुछ प्रश्न करूंगा। संत समागम का आज जो अवसर हमें मिला है, मैं चाहता हूं हम सभी इसका लाभ उठाएं।
ठीक
ठीक, फिर इसके बाद फिर प्रश्न करूंगा।
आरंभ कर दूं?
हैं,
आरंभ करूं?
अभी एक क्षण, थोड़ा सा मैं साथ ले लूं। हाँ पानी थोड़ा महाराज के लिए भी ले आना,
भाई जरूरत नहीं, मुझे ठीक
नहीं तो बीच में पड़ेगा, थोड़ा जरूरत जरूरत बोलने में लगातार जल्दी जल्दी आए, जल्दी जल्दी आए, तो
काम तो ठीक था,
बाहर थोड़ा मच्छर आ जाएगा फिर तो मुझे तो प्रश्न करके चुप रहना जा रहा है। ये ठीक, इसको ऐसा नहीं कर सकते, ये ऑन है जी। हाउ कैन यू कीप वेरी क्लोज टू महाराज,
इसमें कैसे अच्छा हो
सकता
है, बहुत बढ़िया से कैच करता है यहाँ पर रखना या महाराज की गोद में रखना, मेरी आवाज़ बहुत जोर से
आपकी आवाज़ बहुत पावरफुल है।
हाँ वहाँ पर हाँ, मैं पानी रखना, गंदा सीधे आया दौड़ के एकदम रेलवे स्टेशन से। तो मैं इसको इस तरह से स्टार्ट करता हूँ कि मैं ऐसा कहूँगा ना कि आप सबको राम तेज आपका नमस्कार, ऐसी कहते एक सुन कम
रेडियो मेज़बानी की तरफ से।
हाँ
आज मुझे अवसर मिला है कि
अच्छा बोलिए। हाँ वो तो मुझे उसमें है ही, आज हमें बतलाते हुए हर्ष हो रहा।
अच्छा ठीक,
मैं याद कर लूँ मैं क्या बोलता था ना, लेकिन यह वेदवाणी का कार्यक्रम नहीं है, यह एक विशेष कार्यक्रम है।
हाँ ना ना, ये सेपरेट है,
ये सेपरेट है, हाँ ये सेपरेट है, उसको मैं उसी तरह से बनाना चाह रहा हूँ, क्या मैं कहूँगा।
मतलब इसको किसी दिस मस्ट बी फ्रॉम वैष्णव सेवा संघ और समथिंग लाइक दैट
लाइए अब उत्तर दे दूं अब
हाँ,
क्या
हाँ बस ओके मैं शुरू कर रहा हूँ अच्छा मैं बोल रहा हूँ बस
पहला
प्रश्न तो करें पहले
प्रश्न करूंगा बोल कर
तो पढ़ लेंगे अच्छी तरह
हाँ वो मैं आपको दे दूंगा
पढ़ ले पढ़ रहा हूँ अच्छी
नहीं बस मुझे बोला है शुरू का
अच्छा तो बोलिए
हाँ फिर उसके बाद आप बोलिए
ठीक आपके पास में ये है
ये तो हो रहा है
आपके पास में नहीं है
नहीं ये है बस हो जाए
यहीं से हो जाएगा
यहीं से हो जाएगा
आप ऐसे ही सुनेंगे
इसमें रिकॉर्ड हो रहा है ना
हो रहा है
आप रिकॉर्ड कर रहे हैं
हाँ हाँ
हाँ
तो ठीक हो जाएगा
बस
इंट्रोडक्शन पहले उसके बाद
ब्रिस्वानी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है आप सबको रामप्रियदास का हरे कृष्ण आज हमें यह बतलाते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे मध्य इंटरनेशनल गौड़िया वेदांत ट्रस्ट के प्रमुख श्री नारायण महाराज का ब्रिस्बेन में आगमन हुआ है महाराज ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय के प्रमुख आचार्यों में से हैं आचार्य चाणक्य के वचनों में साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधुः कालेन फलते तीर्थ सत्य साधु समागम अर्थात साधुओं का दर्शन पुण्यशाली होता है वह तीर्थों के समान होते हैं तीर्थों का फल बहुत काल के बाद मिलता है जबकि साधु समागम का फल तुरंत मिल जाता है संत हमें अपने वास्तविक स्वरूप का भान कराते हैं मैं महाराज से सर्वजन हिताय कुछ प्रश्न करूंगा। संत समागम का आज जो अवसर हमें मिला है मैं चाहता हूं कि इसका लाभ हम सबको प्राप्त हो महाराज से अब मैं प्रश्न कर रहा हूं। महाराज यह गौड़िया संप्रदाय क्या है और इससे आपका क्या संबंध है
पहले इस विषय में संप्रदाय का क्या तात्पर्य है इसको समझा जाए साधारण लोग संप्रदाय का अर्थ संकीर्ण रूप में ग्रहण करते हैं किंतु शास्त्रों में संप्रदाय माने सौ सम्यक प्रकारेण भली भांति आदाय जो भगवत तत्व को और जीव तत्व को बतलाकर और फिर उनका प्रेम देकर इस भव सागर के लिए से सदा के लिए पार कर देते हैं उस धारा का नाम संप्रदाय है सब धर्मों के मूल और वैदिक ज्ञान इत्यादि के मूल भगवान श्री कृष्ण हैं उन्होंने ब्रह्मा जी को जो उपदेश दिया इस विषय में कैसे आत्मतत्व का और परमात्म तत्व का ज्ञान होगा कैसे उनके चरणों में भक्ति हो सकती है और कैसे इस संसार से छुटकारा हो सकता है उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा बतलाया ब्रह्मा जी ने उसे नारद जी ने व्यास को और व्यास से मध्वाचार्य की संप्रदाय के धारा से अब तक जो धारा चली आ रही है उसी को ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय कहते हैं एक धारा और निकली लक्ष्मी जी से जो नारायण की सेवा करती हैं उससे कली काल में रामानुजाचार्य हुए और उनके संप्रदाय से निकल चल करके उनके माध्यम से वह धारा भगवान की प्रेम की वह धारा रामानुज के आचार्य के शिष्य परंपरा से वो चली
जो पीछे से उसमें एक और शाखा हो गई जिसको रामानंदी कहते हैं, वे विशेष करके तुलसीकृत रामायण के अनुसार में श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सेवा करते हैं, और इस तरह से वो परंपरा अभी तक चल रही है। और रामानुज संप्रदाय में भी अभी तक दक्षिण भारत में इधर उधर में वो संप्रदाय की धारा चली आ रही है। तीसरी एक और है निम्बादित्य,
वही ना चतुसन से हुआ।
हाँ, चतुसन, सनत सनंदन, सनत सनत कुमार, इन चारों से एक भगवान के सेवा और भगवान के तत्व ज्ञान इत्यादि की धारा निकली। कली काल में उनसे
निम्बादित्य
हुए, जिसको कुछ लोग निम्बार्क के रूप में भी जानते हैं। उनकी धारा एक चली जो अब तक उनकी शिष्य परंपरा की धारा से इस जगत में चल रही है। चौथी एक और धारा है जो कि
शिव जी से रुद्र
है,
रुद्र जी से शिव जी से
रुद्र, रुद्र माने शंकर जी से चली, और वही कली काल में विष्णु स्वामी हुए। उनके 1008 सन्यासी शिष्य थे, और पीछे कली काल में वल्लभाचार्य जी उसी संप्रदाय में हो करके वो जिस धर्म का प्रचार कर रहे हैं अब तक उसी धारा से वो आ रही है। तो ये चार वैष्णव संप्रदाय हैं जो कि भगवत तत्व ज्ञान, भगवत प्रेम, उसके साधन भक्ति इत्यादि का मार्ग प्रदर्शन करते हैं। मैं उसी ब्रह्मा से नारद, व्यास जी और तत्पश्चात मध्वाचार्य के माध्यम से जो धारा चल रही है, जिसको ब्रह्म माध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है कहते हैं, उसी की धारा में आज विश्व में सर्वत्र ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जहाँ पर कि उस धारा का प्रचार नहीं कर रहे हैं। वही उसी में हम लोगों का मूल तात्पर्य ये है, जीव ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म का विभिन्न अंश है, ब्रह्म की तटस्था शक्ति से ये परिणत हुआ है। हम लोग शक्ति परिणामवाद मानते हैं। इसके अनुसार में जीव भगवान की सेवा कर सकता है। यदि जीव ब्रह्म हो जाए तो फिर इसका सुखास्वादन वह नहीं कर सकता। इसलिए इस संप्रदाय में मुक्ति का और उसके प्रवर्तक शंकराचार्य इत्यादि को के विचार को खंडन किया गया है। और क्या,
और दूसरा प्रश्न पूछेंगे?
हाँ, तो इसलिए मैं विश्व में संकीर्तन के माध्यम विशेष करके ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु की जो शाखा है उनके अनुगत, उसको गौड़ीय कहते हैं, क्योंकि गौड़ देश में वो हुए। इसलिए उनकी धारा में हम संकीर्तन के माध्यम से विशुद्ध प्रेम का, विशुद्ध भक्ति, उत्तमा भक्ति का हम प्रचार कर रहे हैं।
यह बहुत सुंदर महाराज आपने कहा। अब मेरा दूसरा प्रश्न है कि सामान्य भक्ति तथा विशुद्ध भक्ति में क्या अंतर है, क्या दोनों का फल समान है?
साधारण रूप में जो लोग शुद्ध तत्वज्ञ और रसिक सांप्रदायिक गुरु से दीक्षा नहीं लिया है, वो लोग भक्ति के संबंध में जो धारणा करते हैं वो शुद्ध भक्ति का नहीं है। वो सकाम भक्ति है, उसमें कामनाएं वासनाएं होती हैं, मुक्ति की भी अभिलाषा होती है, स्वर्ग की सुख के लिए है। इसलिए इसको श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी को प्रेरणा दे करके एक श्लोक रचना की है, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तमा। जब अपने तन से, मन से, वचन से, कर्मों से, समस्त इंद्रियों की चेष्टा से, इसके अतिरिक्त भावना से जो चेष्टा करते हैं, उन चेष्टाओं के द्वारा गुरु वैष्णव के अनुगत्य में निरंतर जमयी, निरंतर चलने वाली, निरंतर तैल धारावत अभिच्छिन्न गति से चलने वाली, कृष्ण के सुख के लिए जो चेष्टाएं की जाती हैं, उनको भक्ति कहते हैं। किंतु ये स्वरूप लक्षण है, किंतु जब उस भक्ति से कोई भी संसारी कामना वासना या लौकिक या स्वर्ग इत्यादि की या मुक्ति की कामना नहीं होती और ज्ञान कर्म योग तपस्या इत्यादि से वो भक्ति आच्छादित न हो, अर्थात ज्ञान की जरूरत है, कर्म की भी जरूरत है, किंतु जो भक्ति को लक्ष्य करके ज्ञान और कर्म चलते हैं, उनके अतिरिक्त दूसरे जो ज्ञान हैं, मुक्ति देने वाले, स्वर्ग देने वाले, इन सब से रहित हो, दूर हो, ऐसी भक्ति उत्तमा भक्ति कहलाती है। यही शुद्ध भक्ति या प्रेमा भक्ति है। और इसको छोड़ करके जो कामना से युक्त हो करके स्वर्ग इत्यादि के लिए, मुक्ति के लिए की जाती है, या अपने दूसरे दूसरे देवताओं की भी पूजा की जाती है, वो भक्ति शुद्ध नहीं है। उसी को साधारणी के रूप में, सकाम भक्ति के रूप में समझ जाएगा। इस सकाम भक्ति के भी बहुत से रूप हैं, एक दो नहीं, बहुत से रूप हैं।
एक प्रश्न है, एक प्रश्न है महाराज कि जब क्यों करना चाहिए? लोग होम और यज्ञ को अच्छा मानते हैं, हरि कथा उनको दादा दादी की कहानी के समान लगती है, ऐसे ऐसे लोगों को कैसे सही मार्ग दिखाया जाए?
ऐसे लोगों के लिए ही कलयुग में श्री मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी जी और निम्बादित्य, उन लोगों ने जिस तरह से प्रचार किया, आचरण करके लोगों के घर घर जा कर के प्रचार किया, वैसे शक्तिशाली तत्वज्ञ और रसिक विद्वान भक्त लोग देश देश में, गांवों गांवों में, नगरों में उसका प्रचार करें। जैसे हम लोग अभी हमारे गुरु पाद पद्म श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज थे, उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद थे, उन्होंने ही और उनके पिता और गुरु भक्ति विनोद ठाकुर ने ये प्रचार का माध्यम बनाया और देश में, विदेश में, सर्वत्र इसका हम लोग प्रचार कर रहे हैं। इस प्रकार से प्रचार करने से साधारण लोग भी भक्ति क्या है समझेंगे। जैसे कि हम लोगों के प्रचार से आज विश्व में लाखों लोग इस शुद्ध भक्ति को ग्रहण कर रहे हैं। वे लोग पान, बीड़ी, सिगरेट, मांस, मछली, प्याज, लहसुन सबको छोड़कर, शिखा रखकर, तिलक और माला ग्रहण कर और हरिनाम संकीर्तन करते हैं और वे भी प्रचार करते हैं। इसी तरह से ही संभव हो सकता है। हम लोग जो प्रचार कर रहे हैं उसका बहुत ही सुखद सफलता हम लोगों को दिख रही है।
महाराज, यह जब जो लोग कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का क्या अर्थ है?
इसको महामंत्र कहा जाता है। कलिसंतरण उपनिषद का यह मंत्र है। पहले तो था किंतु गुप्त रूप में था। श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगत में आए तो इन्होंने प्रकाश किया इसका। ये महामंत्र है, इसमें कृष्ण के 16 नाम हैं। कृष्ण ही स्वयं भगवान है, ये गीता और भागवत इत्यादि शास्त्र सभी कहते हैं। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं, वे चाहे तो एक सेकंड में विश्व ब्रह्मांड का ध्वंस करके करोड़ों नए विश्व ब्रह्मांडों की रचना कर सकते हैं। अहेतु की दयालु हैं और सब सद्गुण संपन्न हैं। उन्होंने कलयुग के कल्याण के लिए जीवों के लिए एक महा औषधि स्वरूप, अव्यर्थ औषधि स्वरूप अपने इस नामों को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, अपनी सारी शक्ति सारी दया और सारे गुणों को उसमें अर्पित कर दिया। अब ये कृष्ण नाम कृष्ण के समान शक्तिशाली हो गए हैं। जीवों के जन्म जन्मांतर के कष्ट को हटाकर दूर कर कृष्ण प्रेम देकर और उनको भव सागर से पार करा सकते हैं, उनके सारे दुखों को दूर कर सकते हैं, इतनी उसमें शक्ति है। चलते फिरते उठते बैठते दिन में रात में सवेरे शाम को टहलते हुए अपवित्र अवस्था में भी टट्टी पैखाना करते हुए भी इस हरिनाम को कर सकते हैं। इसमें जो हरे शब्द है वो हरे माने हरण करना, राधा जी कृष्ण की स्वरूप शक्ति हैं, लादनी शक्ति हैं, वे कृष्ण से अभिन्न हैं, किंतु लीला विलास के लिए वो कृष्ण से ही वो शक्ति लादनी शक्ति प्रकट होती हैं राधा जी के रूप में। वो बड़ी शक्तिमान हैं, बड़ी सुंदर हैं, अपनी प्रेममयी सेवा से कृष्ण के चित्त को भी हरण कर लेती हैं, इसलिए उनका नाम हरा है। हरा से ये हरे हुआ है संबोधन में, इसलिए हरे से हुआ राधिके, हे राधिके। और कृष्ण बड़े आकर्षक हैं और आनंद देने वाले हैं, इसलिए कृष्ण संबोधन शब्द है, हे कृष्ण हे राधे। और हरे राम, हे हरे राधिके, हे राम राधा रमण कृष्ण, दशरथी राम वाले नहीं, उनका अलग मंत्र है। इसलिए राधा के हृदय में जो रमण करते हैं उस कृष्ण का नाम ही यहाँ पर राम है। नाम में इतनी शक्ति है कि इस नाम का आभास भी यदि हो जाए, शुद्ध नाम न हो, तो भी संसार के कष्ट सब दूर हो जाते हैं। और प्रेम हो, प्रेम के साथ में यदि हर नाम शुद्ध है, एक नाम हो जाए, तो कृष्ण का प्रेम दे सकते हैं और भव सागर से तो पार अनायास ही हो जाएगा।
बहुत सुंदर महाराज, आपने बहुत ही अच्छा अच्छी इसकी व्याख्या की। अब एक प्रश्न है कि आज नई पीढ़ी जो कंप्यूटर के युग में जन्मी है, उसका रुख भौतिकवाद की ओर है, वो बाहरी चकाचौंध में अधिक आनंद मना रही है, उनको कैसे आध्यात्मिकता के मार्ग में लाया जाए?
हम लोग यही विचार करके हमारे गुरु परंपरा के आचार्यों ने इस प्रकार से विश्व में सर्वत्र घूमकर प्रचार करने का तरीका अपनाया। इसके अतिरिक्त घर बैठे से नहीं होगा, बिना बुलाए ही देश में विदेश में बड़ी बड़ी सभाएं करके, जैसे कि हम लोग करते हैं, दो दो चार चार पाँच पाँच हजार आदमी आते हैं, नवदीप धाम की परिक्रमा करते हैं, ब्रजमंडल की परिक्रमा करते हैं, जिसमें हजारों लोग आते हैं, और यही सब का विचारों का इंजेक्शन नई पीढ़ी को हम लोग देते हैं, उनको निमंत्रण करते हैं, किसी बहाने से उत्सव में स्वादिष्ट भोजन इत्यादि का लोप देकर के भी उनको बुलाते हैं, और इस जो हमारी हमारे जो शिक्षणीय विषय हैं उनको उन लोगों को बतलाते हैं। इस प्रकार से इसका सुफल ये हुआ और सारा विश्व में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार बढ़ रहा है, और ये भौतिकवादी लोग भी हम लोगों की तरफ में झुक रहे हैं।
बहुत सुंदर महाराज, यह एक अच्छा मार्ग है निश्चय ही, कि जिससे हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और उनको इस मार्ग में लाएं। हाँ,
इसके लिए हम लोग स्कूल कॉलेज भी रखते हैं। हम लोग दवा खाने चैरिटेबल डिस्पेंसरी इत्यादि भी रखते हैं, संस्कृत की पाठशालाएं भी रखते हैं, स्कूल भी रखते हैं, जिससे कि नए नए बच्चे आए और ये इन विचारों को ग्रहण करें बचपन से।
महाराज, विदेशों में यह समस्या कुछ अधिक गंभीर है।
विदेशों में ही हम लोगों ने अमेरिका में और दूसरी जगहों में ऐसे स्कूल और ऐसे ये सब हम लोगों ने स्थापित किए हैं, जहाँ पर कि बच्चों को शिक्षा दी जाती है इस तरह की, जिससे कि वो लोग इस तरफ में झुक सकें।
यह तो बहुत ही अच्छा कार्य है। अच्छा महाराज, एक यह अंतिम प्रश्न मैं कर रहा हूँ। आज समस्त जगत में वैमनस्य व्याप्त है, इससे कैसे बचा जाए और इसको कैसे दूर किया जाए?
हम लोग बैठिए, आज जगत में साइंस बहुत उन्नति किया है, बड़े बड़े मन की गति से चलने वाले हवाई जहाज जिसमें 500-600 लोग चढ़ करके जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ बैठे ही वो क्या मशीन है जिसे देखते हैं,
इंटरनेट से टेलीविज़न,
जिससे कि हम देख सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति कहाँ क्या बोल रहे हैं, उनको देखते हुए देखकर देखते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। अभी हम बैठे बैठे देख सकते हैं कि इंडिया लंका और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच चल रहा है, क्या हो रहा है, साथ ही साथ एक सेकंड में ही उसको देख सकते हैं और जान सकते हैं। जगत मुट्ठी में आ गया है, किंतु इसका एक परिणाम ये हुआ, अभी कंप्यूटर युग आया है, इसका परिणाम हुआ भौतिक जगत की जो भूख हमारी है वो बढ़ गई, भोग करने की लालसा, अच्छे भवन होने चाहिए, बगीचा होना चाहिए, 3-4 ऑल्सेशियन डॉग होना चाहिए, उसकी सेवा करेंगे, माता पिता की सेवा नहीं करते। उसका टट्टी हमने देखा जो लोग उठा करके खुद फेंकते हैं, किंतु माता पिता को नहीं, उनकी सेवा नहीं करेंगे। इस तरह से आत्मज्ञान था आत्मा के लिए, वो दूर हो गया, और कैसे हम दूसरों को जीत सकें, उनको नीचा दिखला सकें, और सबको शत्रु मानते हैं परस्पर, इसलिए अमेरिका दूसरे जगहों पर देशों पर आक्रमण करता है, कोई दूसरे दुश्मन करता है, परस्पर लड़ाइयाँ होती हैं, और इसके लिए नाइट्रोजन बम, हाइड्रोजन बम और न जाने क्या क्या विनाश करने के लिए ये सब चीज़ें निकल रही हैं, किंतु एक चींटी का पैर भी नहीं बना सकते, यदि टूट जाए तो नहीं बना सकते। आत्मा इसके भीतर है, उसको जान नहीं सकते इस साइंस के द्वारा। एक दिन भगवान उन पर कृपा करें, यदि ये साइंस पूर्ण रूप से यदि उन्नत हो सकता है, तब आत्मा परमात्मा को समझ सकता है इस ज्ञान को, तब वो देखेगा क्या जगत में एक ही भगवान है, वही गॉड है, ईश्वर है, परमात्मा है,
अल्लाह है,
कौन, यीशु क्राइस्ट है, वही सब कुछ है, एक ही, दो नहीं है, देश भेद से, वातावरण के भेद से उनके नाम अलग अलग हैं, किंतु विश्व का जो रचयिता एक ही है। हम मनुष्य जितने भी हैं, देवता हैं, पशु हैं, पशु पक्षी प्राणी जितने सब उनकी ही संतान हैं। यदि हम समझेंगे हम भाई भाई हैं, भाई बहन हैं, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाएंगे, उनके प्रति शत्रुता नहीं रहेगी बल्कि प्रीति आ जाएगी, और इस तरह से संसार सुखमय हो सकता है। किंतु यह ज्ञान नहीं होने से ये परस्पर द्वेष विद्वेष बढ़ता जा रहा है, और इसका फल ये है कि हमारा विनाश की तरफ पर एकदम हम लोग बढ़ रहे हैं। इसलिए इस नाम संकीर्तन रूपी ये जो हम लोग जो तत्व ज्ञान का, वैदिक तत्व ज्ञान और नॉलेज का हम लोग जो प्रचार कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि लोग इस चीज़ को समझें। भगवान ने देशों को अलग अलग नहीं बांटा, हमने उसे बांटा। वीसा की व्यवस्था कर रहे हैं डर के मारे, पासपोर्ट इत्यादि वीसा होना चाहिए, दूसरी जगह नहीं जा सकते। क्यों? इसीलिए डर है कि वो आकर के हमारा कोई शत्रुता का कार्य न कर जाए। दूसरों को सभी लोग शत्रु समझते हैं। यदि वो समझें ये एक ही भगवान के हम लोग संतान हैं तो मित्रता आ जाएगी। यहाँ तक कि पशु पक्षियों का मरना भी बंद हो जाएगा, सभी सुख से इस जगत में रह सकते हैं और भगवान को प्राप्त करके इस नश्वर संसार से मुक्त हो जाए। बस
बहुत ही सुंदर महाराज आपने बताया यह, इससे निश्चय ही मैं आशा करता हूँ कि हम सभी को लाभ होगा। महाराज अब यह आखिरी आपसे प्रार्थना है कि आप ब्रिस्बेन वासियों के लिए कुछ क्या आपका संदेश है?
क्या
ब्रिस्बेन वासियों के लिए आपका संदेश?
यही जो हमने कहा यही संदेश है। सभी एक भगवान का संतान समझ करके पूर्वक रहें। मांस मछली प्याज लहसुन मदिरा पान दूर करें और दूसरों को शत्रु न समझ करके अपना भाई बंधु समझें। इस तरह से सुखपूर्वक रहें और भगवान का भजन करें, भक्ति करें। उनका नाम कलयुग में हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरे राम,
इसी से उनका कल्याण हो सकता है। और कोई दूसरा पथ नहीं है, नहीं है और नहीं।
जय हो।
आएगा कब आएगा?
कल सुबह आएगा, शनिवार को भी आएगा।
दो चार दिन में?
हाँ नहीं, कल कोशिश, कल तो फ्राइडे है,
शनिवार
की कहा,
हाँ
शनिवार से कहा।